हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा शिशे राधा वृंदावन चंद्र के कृपा पात्र स्कान पुणे के भक्तवृंद और फेसबुक के ऊपर जो भाग्यशाली भक्त जन्माष्टमी के पूर्व काल में हरि कथा कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे भगवान का जन्म तो नित्य है, भगवान की लीला नित्य है। ये रुक। हरे कृष्णा। भगवान का जन्म नित्य है। तो हम पांचवा अध्याय आज दसम स्कंद का उसका शुभारंभ करेंगे, जिसको मुख्य रूप से 18 पहले श्लोक में नंद उत्सव कहते हैं। इसलिए हमने ये कहा कि प्रभुपाद जी एक बार किसी सेंटर से जा रहे थे तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी बस कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है, आप यहीं रुक जाइए। प्रभुपाद ने कहा जन्माष्टमी तो रोज होती है भगवान की, भगवान का नित्य लीला में कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो अपन अगर रोज ही कथा ये करें तो भी बहुत अच्छा है। तो आइए पांचवा अध्याय दसम स्कंद के पहले दो श्लोकों का श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच नंदस्तु आत्मजा उत्पने जात अहलादो महामनः। नंदस्त, नंद कौन है? नंद जो पूरे विश्व को आनंद दे दे, एक समय के लिए नहीं अनंत समय के लिए। कैसे आनंद दे? आत्मजा उनके घर में उनके ही पुत्र के रूप में, आत्मजा कहते हैं पुत्र में, अपने पुत्र का उत्पन्न प्रकट हुआ है। जब बोलते हैं तो ये कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, कोई नहीं कहते हैं नंद के बेटा भयो, नंद के यहां परम आनंद सच्चिदानंद भगवान साक्षात गोलोक अधिपति प्रकट हुए हैं। तो उसके साथ किसने जन्म लिया है? जात अहलाद, अहलाद ने जन्म ले लिया। अहलाद कहते हैं प्रहलाद, अहलाद, अहलाद का मतलब आनंद, अति आनंद ने जन्म लिया है। क्यों? महामन है नंद। कैसे है? महामना, जिसका मन महान भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में सदा विलीन रहता है और जो कृष्ण के ध्यान में सदा मगन रहता है उसके अंदर सारे देवताओं के सद्गुण आ जाते हैं। वो तो बड़ा उधार है, जो चाहो वो दिल खोल के सबको देने वाला है। इस क्यों? क्योंकि उसके यहां परम आनंद प्रकट हुआ है। तो नंदस्तु आत्मजा, इस आत्मजा एक शब्द के ऊपर हमारे आचार्यों ने सीधी टीका लिखी है। और जो तू शब्द है इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, नंदस्तु आत्मजा, वसुदेव को बेटा हुआ ऐसा नहीं लिखा है, वहां तो चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, उनको तो बेटा मानने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनको तो वो प्रार्थना कर रहे थे हे परम पुरुष भगवान, हे माया से परे प्रभु। लेकिन यहां ये बात नहीं है, वहां तो विष्णु प्रकट हुए। और ऐसा हमारे आचार्यों ने बहुत शास्त्रों से, हरिवंश पुराण में तो 8 महीने में यशोदा ने भी एक बालक को जन्म दिया और देवकी ने भी एक बालक को जन्म दिया ऐसे लिखा है। और ये तंत्र में तो ये लिखा है यशोदा ने गोविंद नाम के बालक को और उसकी छोटी बहन जिसको क्या कहते हैं अष्टभुजा में जो दुर्गा हो गई, इन दोनों को जन्म दिया। मिथो दो को जन्म दिया। तो त्व का यहां परिभाषा ये है कि भले देवकी और वसुदेव के वहां भगवान प्रकट हुए लेकिन उत्सव मनाने का सौभाग्य तो नंद को प्राप्त हुआ, नंद के यहां आनंद हुआ है, नंद के यहां महा आह्लाद हुआ है। ये कैसा आह्लाद हुआ है 18 श्लोकों में। यहां ये समझो कि 18 पुराणों का सारा सार है और सारे विद्याओं का आनंद का यहां बहुत आनंद है। दो कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर लिखते हैं कि नंद के घर में बालक का जन्म हुआ है। पहला ये इस श्लोक में वो शब्द आ रहा है, जात कर्म आत्म जस्य, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म का मतलब माता से बेटे का जो संबंध नाड़े का होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है, वो काट आ गया। तो ऐसे तो नहीं हो सकेगा कि वसुदेव नाड़े के साथ बच्चा लाए होंगे, और वसुदेव को वहां तो चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुआ था। और ज्योतिष शास्त्र वाले तो ऐसे कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में वसुदेव के यहां प्रकट हुआ तो वासुदेव कृष्ण, और तीसरे चरण में यशोदा के नंदालय में प्रकट हुआ तो बिहारी रास बिहारी, वो वह है वो वी है। तो दोनों में और दो जगह पे प्रकट हुए हैं चक्रवर्ती पाद। एक तो कहते हैं जात कर्म संस्कार, और दूसरा कहते हैं भगवान ने कहा आप योग माया मेरी अनुजा के रूप में प्रकट हो। अनुजा का मतलब छोटी बहन, तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन होगी ना। ब्रह्मा जी कहते हैं पशुपालक नंद का पुत्र कृष्ण पशुपांग, और सुखदेव महाराज कहते हैं गोपी, ये गोपी नंदन गोपी का सुत है, ये गोपी का बेटा है। आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि वाराहदेव ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए, तो क्या ब्रह्मा जी को कोई पिता मानता है क्या वाराहदेव का? या उत्तरा के उदर में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश होकर परीक्षा की रक्षा की, तो उत्तरा का बेटा कोई मानता है क्या? नहीं। तो जो ऐसे पैदा हो उसको बेटा नहीं, जो बेटा माने जिसका। तो नंद और यशोदा तो कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, प्राण का अपना ही प्राण मानते हैं। वसुदेव और देवकी के पास जब कृष्ण 12 साल के बाद मिलने गए कंस का उद्धार करने के, तो वो तो दोनों उसको चतुर्भुज रूप का स्मरण करके वो माथा टेक रहे हैं माता पिता के चरणों में, और वो तो कह रहे हैं आप भगवान हो। तो उनके अंदर ऐश्वर्य का भाव है, और नंद और यशोदा के अंदर माधुर्य प्रेम वात्सल्य भरा हुआ है। तो नंदस्त्व का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आचार्य ने दिया है कि महाउत्सव नंद ने मनाया है, नंद के घर में आनंद हुआ है। और ये चेतना चरित में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सातवें मनवंतर जो आप जो भी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, उसके 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद यशोदा के यहां प्रकट होते हैं, और उनका उद्देश्य न तो असुर संहार है और न ही कोई और कार्य है, ये कार्य तो विष्णु का है। इसलिए वसुदेव और देवकी के यहां चतुर्भुज में प्रकट होके उस कार्य को करने के, तभी तो देवताओं ने कहा आप सत्यव्रत हो, आपने कहा था अवतार लूंगा और आप अवतार लेकर आ गए। लेकिन कृष्ण स्वयं क्यों अर्पण प्रकट होते हैं? ये स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रेम का, कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ में गोलोक धाम से माता पिता लाते हैं, और बड़े बूढ़े गोप लाते हैं वात्सल्य प्रेम के प्रकाशन के लिए, और अपने ही अंग से उत्पन्न अपनी ही शक्ति अहलादिनी राधा रानी के विस्तार अनंत विस्तारों की गोपियों को साथ में लाते हैं, और अपने नित्य सिद्ध ग्वाल माल साथ में लाते हैं, और अपने सेवक साथ में लाते हैं। ये चार रसों के सारे नित्य सिद्ध पार्षद साथ में लाके ब्रज में 12 वर्ष तक या 11.5 वर्ष तक 3.5 साल तक गोकुल में, और फिर वृंदावन में 3.5, और फिर 3.5 नंदगांव में वात्सल्य प्रेम की, सखा प्रेम की और माधुर्य प्रेम की पुष्टि और सबको निमंत्रण देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण है, उसका यहाँ वर्णन हो रहा है। तो आप ये कोई पूछे कि फिर वसुदेव कृष्ण लाए थे वो कहाँ गया? वो नंद नंदन में समा गया और दोनों एक हो गए। और इसलिए ये बात प्रसिद्ध है कि कृष्ण एक पग भी एक कदम भी ब्रज से बाहर नहीं जाता। तो जब अक्रूर कृष्ण को ले जा रहे हैं बलराम जी के साथ, तो अक्रूर घाट से आगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो अपनी नित्य लीला अप्रकट लीला में ब्रज में रहे और स्वयं प्रभु बलराम जी साथ में रहे, लेकिन वो जो भाव में कृष्ण दो नहीं है, लेकिन अब ऐश्वर्य के भाव में वहां से श्री कृष्ण मथुरा चले गए और शेष जी मथुरा चले गए, क्योंकि विष्णु और शेष को ही तो देखा था अक्रूर काका ने। तो यहां नंदस्तु आत्मजा उत्पने जात अहलादो महा मनाहा, क्या किया, आहुय आहुय विप्रान वेदज्ञा, वेदज्ञ विप्रों को बुलाया। विप्र कहते हैं जो वेदज्ञ होता है ब्राह्मण, और विप्र का मतलब विशेष, और प्र का मतलब सब इच्छा पूरी करने वाला, जो सब इच्छा पूरी करे उसको विप्र लिखा है। उसको बुलाया, काय के लिए बुलाया और कब बुलाया, बुलाया स्नात सुचि अलंकृत, पहले श्री कृष्ण के जन्म के समय स्नान कराया उनको, ये पहला बच्चे का स्नान हुआ, और फिर उसको अलंकृत वस्त्र आभूषण पहनाए, और फिर उनको बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर क्या कराया, वाच्यत्वा स्वस्ति अयनम, ब्राह्मणों ने स्वस्ति के लिए बच्चे के स्वस्ति वाचन की, स्वस्ति नो इंद्रो वृष सर्वाहा, ये जो स्वस्ति वाचन है वेदों का और हमारे पास वैष्णव स्वस्ति वाचन है, ये स्वस्ति वाचन किया गया। कब किया गया, जब तक बच्चे का जात कर्म संस्कार नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता, सूतक उसके बाद लगता है। जात कर्म आत्मजा वही, अपने बेटे का जात कर्म संस्कार विधिवत कराया और कार्यामास करवाया, क्यों करवाया, स्वयं ने नहीं करवाया, कुछ काम पूजा में स्वयं को बैठना चाहिए। बोला स्वयं इतने आनंद में विभोर थे, नंद बाबा को कोई आशा नहीं थी कि इस उम्र में मुझे पुत्र होगा। चंपू ग्रंथकार ने तो लिखा है कि यशोदा सुमुखा गोप की पुत्री, जिसका माता पिता का घर काम्य वन में था, नंद बाबा जो ब्रज के राजा थे उनके साथ विवाह तो हुआ, संतान नहीं, बस बाकी सब सुख था, संतान नहीं थी। तो बहुत पूर्णमासी जब वहां आई तो कहा कि आपके यहां संतान होगा, तो नीलमणि नंद बाबा के मन में प्रवेश होके और उनके मन से यशोदा के यहां प्रवेश हुए हैं। और आज जब न कृष्ण के प्रकट का समय हुआ, तो नंद बाबा अपने सालंग्राम शिला नारायण की पूजा करते हुए आंख को बाहर हैं। यशोदा मैया ने कहा क्या बात है, बोला मेरे को आपकी गोद में बहुत नन्हा सा नीलमणि बालक खेलता दिख रहा है। नंद बाबा कहते हैं मुझे भी, यशोदा कहती है लजा आ रही है, मैं तो आपकी गोद में बच्चा देख रहा हूँ। सांडल्य ऋषि जो पुरोहित है नंद का, नंद बाबा के यहाँ आते हैं, पूछा हमको ये स्वप्न हुआ है गुरुदेव, बोला आज रात को 12 बजे तक आपके घर में बालक का जन्म होगा। तो सुनंदा जो नंद और उपनंद आदि की बहन है, वो घर में भुआ आई है और सारा व्यवस्था देखा है, और बालक का जब जन्म हुआ है तो सुनंदा ने देखा है कि लड़का है, बाहर जाके कूदती हुई नंद को बताया। नंद तो आनंद में विभोर होके ऐसे ही जमुना में कूद पड़े, कपड़ों के साथ वैसे स्नान नहीं करते हैं, लेकिन जितने चींटे आकाश में जाते हैं उतने पितृ प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ लिखा है पितृ देव अर्चनम तथा, और उसके बाद जो भी पूजा करना है विधिवत वो करवाया, क्योंकि स्वयं तो बहुत विवल थे, पुत्र के उत्पन्न के कारण बहुत विवल थे। तो श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भाव लिखते हैं कि एक पुत्र यशोदा के यहां पर प्रकट हुआ और दूसरा प्रकट हुआ नंद के यहां, तो ये चक्रवर्ती पाद का भाव है। और जीव गोस्वामी आदि ने तो बहुत विस्तार से शास्त्रों से खोज खोज कर नंद के घर में बालक का जन्म हुआ है उसका वर्णन, गोत्र में तंत्र में कृष्ण को यशोदा का बेटा कहा गया है, यशोदा नंदन। क्रम दीपिका में कहा गया है नंद गोप तन्य। तो ये सारे शास्त्रों का वर्णन करके यहां बताया हुआ है। अब हम जाते हैं, क्योंकि अपने को ये अध्याय तो नहीं, कम से कम 18 श्लोक पूरे करने। अब नंद बाबा ने क्या किया, ये ब्राह्मणों से काम करा के फिर काम क्या किया, धेनु नाम न्योत प्रादात। धेनु कहते हैं जो बछड़ी पहली बार बच्चे को जन्म दे, ऐसे तो गाय 5-7-10 बार जितना भी जन्म दे, लेकिन पहली बार दूध वाली गाय उसको कहते हैं धेनु। धेनु नाम न्योत, न्योत का अर्थ 2 लाख सामान्य होता है, लेकिन जीव गोस्वामी ने कहा है 20 लाख, 2 मिलियन। प्रदात दान किया, कौन सी, दूध वाली, नई ताजी ब्याई हुई दूध वाली गाय। कैसे दान किया, विप किसको दिया, विप्रेभ्यो ब्राह्मणों को दिया, जिनको घर में स्वस्ति वाचन के लिए और पूजन के लिए बुलाया था उनको दिया। बोला ऐसे ही गाय दे दी, नहीं, स अलंकृत, कहते हैं सोना सिंघों के ऊपर लगाया, खुरों में चांदी लगाई, पूंछ में हीरे मोती लगाए, सुंदर वस्त्र आभूषण ऊपर ढक दिया, और छोटी बछड़ी साथ में दे दिया जो उसका बच्चा था, और दूध दोहने के लिए बहुत सुंदर चांदी का पात्र दे दिया, और रस्सी छोटी गाय को पीछे बांधने वाली न्योत वाली दे दी। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं इतना सारा अलंकरण से गाय देना, ये वेशों की समृद्धि, ये भारतवर्ष का ये भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को देखो कि गाय पालन वाले नंद बाबा के घर में कितना धन था कि इतनी गाय, 20 लाख गाय, और ऐसे बहुत अलंकार से सुंदर श्रृंगार करके और ब्राह्मणों को दान कर। प्रभुपाद ने कहा जब से वैदिक इस व्यवस्था का लोगों ने पालन छोड़ दिया है और गाय का पालन और कृषि को छोड़ दिया है, प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा हमारे बलराम जी कृषि के आचार्य हैं, हाथ में हल है, और हमारे कृष्ण गौ रक्षा के आचार्य है, गौपाल है, इन दोनों का जो इन दोनों के शिक्षाओं का जो अनुसरण करेगा वो सदा सुखी और समृद्धिमान रहेगा। अब एक और दान कर रहे हैं गायों के साथ, दूसरे को उत्तम दान किसको कहते हैं, तिलाद्रिम सप्त रत्न औघा, 7 तिलों के पहाड़ बनाए। ये अद्री, तिल की अद्री किसको कहते हैं, उसमें कितना होता है, कितने तोले होते हैं, और तोलों का फिर अद्री किसको कहते हैं, 256 तोले इकट्ठे हो जाएं, पल इकट्ठे हो जाएं, फिर वो ऐसे 10 अद्रियां बड़े से बड़ा दान है, ऐसा आचार्यों ने इस अद्री की वर्णन, और तिल उत्तम दान माना जाता है। सिर्फ तिल नहीं, तिलाद्रिम पहाड़ बनाए, तिल के 7 बनाए, रतन होगा उसके ऊपर रतन रखा, और यहां तक लिखा है कि दक्षिण में कौन सा, बीच में मेरु सुमेरु पर्वत बनाया, फिर सीधे तरफ क्या रखना है, राइट में क्या रखना है, दक्षिण में क्या रखना है, उत्तर में कौन सा रतन रखना है, कौन सा कपड़ा रखना है, 7 कुंभा और कुंभ अंबर, बहुत सुंदर कौंभारपण, बहुत सुंदर उनके ऊपर कपड़ा, सुनहरी रंग का कपड़ा ढक दिया उसके साथ ढक के, और ये सब दान दिया ब्राह्मणों को नंद बाबा ने। अब क्यों दान दिया, नंद बाबा इतना बहुत विवल हो गया था, नंद बाबा हो गया था विवल, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी ये सब काम करने की, तो सिद्धांत स्थापित करते हैं, काले न स्नान सुच्य भाम संस्कारा तपस्या शुद्ध्यंत दान संतुष्टया द्रव्याण्य आत्मा आत्म आत्म विद्या। कह के एक शुद्धि का एक विधान है, समय बीतने से ये धरती शुद्ध हो जाती है, पानी गिरता है रोड धरती अपने आप समय के साथ शुद्ध हो जाती है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के अंग शुद्ध होते हैं, मैले चीज को धोने से शुद्ध होती है, और संस्कार करने से गर्भ दोष से बालक पवित्र होता है। संस्कार ना हो तो विकारित रहेगा बालक, तो संस्कारों से बालक का जन्म गर्भ के दोषों से मुक्त होता है। ऐसे तो आयुर्वेद ने लिखा है कि गर्भ के दोषों से मुक्त होने के लिए संस्कार किए जाते हैं, और दान देने से धन की शुद्धि होती है, इसलिए इतना उत्तम दान यहां किया है, और आगे दान का वर्णन भी आएगा। और जो द्रव्य हैं ये धन आदि दान देने से शुद्ध होते हैं और मन शुद्ध होता है संतुष्टि से और आत्मा आत्म विद्या से कृष्ण भावना से आत्मा की शुद्धि होती है। विशेष बाकी सब शुद्धियों का वर्णन अपने जहां समय पे है अपने नेम से होता है लेकिन आत्म शुद्धि सबको करनी है ये विधान है। कृष्ण भावना भावित होकर आत्म विद्या भगवद गीता आत्म विद्या है। ये भीष्म पितामह कहते हैं जब अर्जुन कृष्ण के मित्र को मोह हो गया तो भगवान ने आत्म विद्या देकर उसके मोह को आत्म विद्या वहां कहा है भगवद गीता को। तो इस भगवद गीता की विद्या ये आत्मा को शुद्ध करती है। आत्मा को शुद्ध करती है का मतलब जो जीव भूत है जो तीनों गुणों से प्रभावित है वो भगवद गीता के भक्ति योग से तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है तो फिर वो ब्रह्म भूया या कल्पते वो ब्रह्म भूत हो जाता है। ये आत्मा की शुद्ध स्थिति है। आत्मा की शुद्ध स्थिति है ब्रह्म भूत और ब्रह्म भूत होने के लिए एक ही रास्ता है और वो है अभी विचारे न भक्ति योगे न सुगुणान समर्थितेतान ब्रह्म भूया या कल्पते। तो अब हम आगे के श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये शुद्धि का सिद्धांत है सबको इस शुद्धि का मार्ग आत्म शुद्धि करनी चाहिए और धन की शुद्धि करनी चाहिए। अब क्या होने जा रहा है। अब ये तो नंद के घर में आनंद हुआ बच्चे के जन्म का दूसरे दिन पता हो गया तो कौन कौन आए गाने वाले आए बजाने वाले आए इतिहास कहने वाले आए कुल कीर्ति गाने वाले आए। तो लिखा है सुमंगलाय गिरो विप्रा। पहले तो ब्राह्मण विप्र सुमंगल गिरो अपने सुंदर गिरी गिरा कहते हैं गले को सुंदर सुमंगला कल्याणकारी मंत्र उच्चारण करने लगे। बहुत सुंदर मंत्रों के साथ वातावरण को शुद्ध कर दिया। सूत आए जैसे हम कहते हैं सूत गोस्वामी का काम क्या है। ये सूत गोस्वामी नाम है इसका उग्र सर्वा सूता है जो भागवत कह रहा है और अन्य सारे शास्त्र जो है किस सूता ने कहे हैं रोम हर्षण सूता व्यास देव का शिष्य। तो ये सूतों का काम है पुराने इतिहास पुराण बताना रामायण बताना महाभारत बताना ये सूतों का काम है। मागध ये क्या करते हैं ये करते हैं कुल कीर्ति गाते हैं महाराज प्रजन ने आपका पितृ नंद बाबा पुत्र आपका पिताजी कितना महान था उनके पिताजी देव मीर कितने महान थे और आपके कुल ऐसे आपके कुल की वंशावली आपका कुल भी आगे जाके यदु कुल से ही जुड़ा हुआ है और देव की देव मीर महाराज के एक पुत्र सूरसेन दूसरा प्रजन्य और इनके पुत्र सूरसेन का वसुदेव और प्रजन्य का नंद तो ये उनकी कुल कीर्ति और बंदी भी और दूसरे समय के अनुसार गीत बनाने वाले ये बंदी भी आए गायका ये सब गाने वाले हैं चाहे जुगोर नेदोर और जब गाएंगे तो कुछ बजाएंगे भेरिया दुम दुब्य हो मोह सब बाजा बजा के और गान करने लगे। तो हर ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करने लगे सूत कथा करने लगे मागध वंशावली गाने लगे और वंदी भी समय के अनुसार जैसा है कि अब उस वक्त नंद के आनंद भयो गाना है या कुछ और बधाई गानी है वो गाने लगे तो ये सब अपना कार्य करने लगे। आगे आता है इतने सब यहाँ गए बाकी सब ब्रजवासी कहाँ चले गए। बोला वो काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे। बोला एक तो नंद के घर के अंदर तो नंद के घर को धो के सजा रहे थे और बहुत सुंदर तोरण लगा रहे थे गेट बना रहे थे और सारे ब्रजवासियों ने समझा नंद के घर में आनंद आया तो हमारे पूरे आनंद तो पूरे ब्रह्मांड में क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हो गया है लेकिन हम अपने घरों को तो सुंदर बनाए तो व्रज पूरे ब्रज बात पूरा ब्रज मंडल समृष्ट संक्षिप्त समृष्ट संक्षिप्त सम्यक रूप से अच्छी तरह से पहले तो साफ किया गया समृष्ट साफ किया गया फिर संक्षिप्त फिर उसके ऊपर जल छिड़का गया कौन सा और गुलाब का जल छिड़का गया चंदन का जल छिड़का गया बहुत सुंदर पवित्र वाता द्वार और घरों के द्वार नंद महल के द्वार और घरों के द्वार सब ब्रजवासियों के बाहर तोरण बना दिया गया आजीरा बहुत बड़े तोरण बना दिए गए ग्रहंत चित्र ध्वजा और बहुत छोटे छोटे झंडियां बड़े बड़े झंडे और उसके साथ पताका सर का चैल है, छोटे छोटे कपड़ियों कपड़े की झंडियां, और फिर पलवा आम के पत्ते, तोरण तोरण कहते हैं जहां ऊपर, जैसे हम गेट के ऊपर बनाते हैं। तो ये सब पूरा ब्रज में जैसे बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, सब उन्होंने अपने घरों को श्रृंगारा कि हमारे यहाँ नंद का लाला आ गया है, आनंद आ गया है। तो अपने घरों को सबने बहुत सुंदर नंद भवन, तो ऐसा तीन प्रकार के, जीवा गोस्वामी लिखते हैं, तीन प्रकार के गेट बनाए, कपड़े के गेट बनाए और जैसे केले के और आम के पत्तों के गेट बनाए, और दूसरे तोरण जो है, जैसे हम कपड़े के गेट बनाते हैं ऐसे ये गेट बनाते हैं, फूलों के मालाओं के गेट बनाए। तो ये सब गेटों का वर्णन हुआ। और इसके बाद पहले कौन आया बधाई देने के लिए? कृष्ण है गोपाल, गो ब्राह्मण, ब्राह्मण बाद में, गो पहले, गौ की रक्षा के लिए आते हैं। तो आज ग्वाल बालों ने विचार किया, आज चराने नहीं जाएंगे, आज एक और हमारा ग्वाला मित्र आ गया है, ले चलो अपने गौएं श्रृंगार करके नंद भवन में। तो पहले गावो वृषवत्सराह, गाय, वृषभ, वृषभ का मतलब बैल, और बैलों का भी बहुत बड़ा कृष्ण ज्ञान होता था गोपों को, कौन सा बैल किस काम का है, कौन गा, कौन सा खेत में चलेगा, कौन सा गाड़ी में चलेगा, कौन सा जो है बनेगा बिजार आगे चल के, ये उनकी अपनी श्रृंखला होती है। और वत्स रहा, छोटे छोटे बछड़ों को क्या किया, हरिद्रा तैला रुषिता, हल्दी और तेल मिलाकर अच्छी तरह से उनके ऊपर लेप लगाया, उनको सुंदर बनाया। और विचित्र धातु हो, जैसे हम धनतेरस के दिन और गोपाष्टमी के दिन उनके शरीर के ऊपर हाथों से लाल रंग लगाते हैं, ऐसे उन्होंने बहुत सुंदर उनके चित्रकारी की। और ब्रहा सर्ग वत्सर, और उनके ऊपर बहुत सुंदर बखमल जैसे चमकीले वस्त्र पहना दिए, और कंचन सोना उनके गले में, कंचन मालिना, कंचन सोने की मालाएं डाल दी। यहाँ प्रभुपाद फिर लिखते हैं, देखो कितना धन था इन गौ पालन वालों के पास, ये भारत की समृद्धि, जब से गौ की सेवा करना, घर घर में चार चार गौ हुआ होती थी, हमने अपने जीवन में अपने घरों में तीन चार चार गाय देखी, रोज गाय के घर में दूध पहले देखता ही गाय को देखते थे, आज भी भगवान के दर्शन करने से पहले गाय का भगवान दर्शन करते। तो गाय सब घरों में होती थी, ये गाय चली गई, ये गाय का दूध, प्रभुपाद लिखते हैं युधिष्ठिर महाराज के राज में गाय जब आती थी तो उनके दूध से जैसे कीचड़ बन जाती है बरसात की, ऐसे कीचड़ बन जाती थी, दूध की कीचड़, कितना दूध था गायों के अंदर, कितना समृद्धिशाली था ये भारतवर्ष। गाय से और धरती से जिसने संबंध छोड़ा, उसका संबंध कृष्ण से अपने आप छूट जाता। कृष्ण और बलराम के साथ संबंध रखना है तो गाय और धरती के साथ संबंध जोड़ के रखना पड़ेगा। और ये सब गाय, ग्वाल बालों को गाय पहले आई है कृष्ण के स्वागत के लिए, और गाय के आने के बाद अब दूसरा कौन आएगा, अब आएंगे गोप। भाई गाय आए तो उनके साथ गोप आए, लेकिन गोप ऐसे तो चले नहीं आए, वैसे तो काम क्या करते हैं, रोज का गाय चराते हैं, गाय दूहते हैं, तो गोबर है लगा हुआ नहीं। आज चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जब से यशोदा मैया गर्भवती हुई है, गोपों ने बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण लेके पेटियों में रख दिए हैं, कि वो दिन जिस दिन कन्हैया का, जिस दिन नंद के घर में आनंद होगा, उस दिन हम सुंदर वस्त्र आभूषण पहनेंगे। महारथ, महाअर्थ, बहुत बड़े सुंदर, बहुत बहुमूल्य वस्त्र, वस्त्राभरण, बड़े सुंदर वस्त्र, कौन से वस्त्र, प्रभुपाद लिखते हैं ब्रजवासी बगल बंडी पहनते, कोट लिखा है प्रभुपाद जी ने, बगल बंडी की तरह वस्त्र पहने, कुंच कोषणी, ये कुंच कहते हैं बगल बंडी को ऊपर से पहनी, और कोशन और ऊपर पगड़ी बांधी, और सबने पगड़ियां बांधी, आंखों में बड़े काजल लगाते हैं ब्रजवासियों ने, काजल लगा, भूषिताए बहुत सुंदर लगने लगे। गोपा समा आए हो राजन, वो सब महाराज आए, परीक्षित महाराज वो सब आए, राजा का एक अर्थ है कि जो सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे थे वो आए, कहां आए, ऐसे खाली हाथ आए का ना, नाना उपायन पाने, हाथों में सोने के हार, और ये गिफ्ट जिसको आजकल कहें नंद के लाला को नंद के घर में देने के लिए उपहार हाथों में लेकर आए। ये आए ग्वाल बाल, आए पहली गाय, आया गाय भाई, फिर आए ग्वाल बाल, अब कौन आना चाहिए? अब तो रह गई गोपियां, गोपियां घरों में काम कर रही थी। काम क्या कर रही थी, कौन सा काम कर रही थी? वही तो घर को धो रही थी, वही तो घर को धोने के बाद सौ सुंदरता बना रही थी बच्चों को लेकर। और अब स्वयं श्रृंगार गोप्यश्चा करण्यः मुदिता, जैसे गोपियों ने सुना, करण्य सुना, क्या सुना? यशोदायः सुत उद्भवम्, यशोदा के वहां सुत हुआ है, बालक हुआ है। मुदा बड़े आनंद में मगन हो गई, मुदित हो गई, आत्मानं भूषाय चक, अपने आप को श्रृंगार करने लगी, बहुत सुंदर श्रृंगार गोपियां करने लगी। वस्त्र बड़े, कौन सा वस्त्र पहना? आगे लिखा है पंचरंगी जी, एक तो महात्मा लिखते हैं कि उनके घर में मिट्टी के पेटियों के अंदर कहीं कोई 40-40 मीटर के लहंगे और पंचरंगे लहंगे, बहुत से रंगों वाले लहंगे, वो बड़े बड़े लहंगे पहने हैं, चुनरी पहनी है। वस्त्र कल्पांजन, आंखों में अंजन तो डालेंगे बगैर अंगन के। एक जगह एक अजनो गांव है ब्रज में, कहते हैं राधा रानी का श्रृंगार तो गोपियों ने कर लिया और कृष्ण की बांसी सुनी, अभी आंखों में अंजन लगाया नहीं। अब अंजन लगाया नहीं और राधा रानी तो वेवल होके भाग गई, उधर कृष्ण ने देखा कि बाकी सब श्रृंगार है, अंजन क्यों नहीं? अरे गोपियों को कहा अंजन क्यों नहीं लगाया? बिना अंजन के, बिना अंजन के सुंदरता कहां से आएगी? तो गोपियों ने बताया इस तरीके से, हम तो श्रृंगार कर रही थी, आपकी बांसुरी सुन के ये वहां से विवल होके आपके यहाँ आ गई। तो कन्हैया ने बैठ के वो गुआ अपने हाथों से राधिका को अंजन किया, अंजन लगाया। तो अंजन गोपियों का, अंजन तो स्त्री का श्रृंगार है, अंजन गोपियों का श्रृंगार है। अंजन का आदि भी का अंदर, आदि भी का अर्थ ये है, आगे आएगा, वो बड़ा लेप उन्होंने सुंदर लगाया है अपने मुख के ऊपर, और जिससे वो बहुत सुंदर चमक रही है। वो कौन सा लेप है? अगले श्लोक में आएगा, चंदन का और ताजा कुमकुम का लेप लगा के आई है। उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं गांव की सुंदरता, आएगा तब उसका वर्णन करेंगे। अब दसवें श्लोक में ये गोपियां ऐसे खाली हाथ आई क्या? नहीं, आ गया ये श्लोक, नव कुमकुम किंजल का, गोपियों ने ताजा सा चंदन और कुमकुम अपने मुख के ऊपर लेप लगवाया है। मुख पंकज, उनका मुख कमल जो था उस पे वो सुंदर लेप लगाया। इसका आधुनिक भाषा में कहा कि बहुत सुंदर जो है ब्यूटी पार्लर का जैसे करते हैं ऐसे कर लिया। उनको लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं थी, गालों के ऊपर लाली लगाने की जरूरत नहीं थी, वो सुबह दही का इतना मंथन करती थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनकी सुंदरता गांव की जो है, वो सुबह जो दही का मंथन करती थी, ये मुंह सारा अपने आप लाल हो जाता था, होंठ लाल हो जाते थे और वक्ष स्थल छाती उनकी बहुत भरी हुई हो जाती थी। आटा पीसती थी, गाय को धोती थी। और ये तो पुराने जमाने की, हमारा जिम घर का ये है लेडीज जिम, ये लेडीज को जिम में जाने के, जाके जिन बनने की जरूरत नहीं है, अपने घर के अंदर दही का मंथन कर लें, आटा पीस लें, तो फिर सुंदरता के लिए बेकार का खर्चा कॉस्मेटिक का करने की कोई जरूरत नहीं। और पुरुष के लिए क्या होता था जिम पुराने जमाने में? कुएं से पानी निकालना या नल का चलाना और सुबह 2 किलोमीटर सवेले चल के शौच के लिए जाना, ये तो स्वाभाविक सुबह सुबह का हमारा कृत्य होता था। ये आजकल के समय व्यर्थ गवा के, पैसा गवा के जिम के में जाने के, जिन बनने की जरूरत नहीं। तो नव कुमकम कंजलिका मुख पंकज भूतयः, बहुत सुंदर उनके मुख का श्रृंगार। और बलि भी, कहते हैं बलि की परिभाषा किसी को जाननी हो, बलि चढ़ाओ, तो गोपियों के हाथ में जो है इसको बलि कहते हैं। बलि कहते हैं उपहार को। बलि में क्या लिया है उन्होंने? बलि में उन्होंने लिया है थाल, चांदी का थाल, वो भी जीव गोस्वामी कहते हैं उल्टे हाथ में चांदी का थाल लिया है। उसके अंदर सामान रखा है, क्या लिखा है? उसके अंदर सामान रखा है, कौन सा? गिफ्ट देने वाला, सोने के आभूषण रखे हैं, चांदी के आभूषण रखे हैं, थोड़ा सा नजर उतारने के लिए हल्दी तिल आदि रखे हैं, तेल आदि रखे हैं, द्रव्य घास रखा है जो जिससे सिंचन करेंगी, तो ऐसा सामान उठाया है। तो बलि भी का मतलब है उपहार, गिफ्ट। ऐसा नहीं है पशु को मारने को बलि कहते हैं, यहां बलि की परिभाषा है। बलि भी उठा के कैसे जा रही है? त्वरितम जगमुहु तेज जा रही है। मतलब आपको कैसे पता लगा सुखदेव गोस्वामी गोस पृथू श्रोण्य, अरे उनके नितंब बड़े भारी हैं और वो जब जा रही हैं चल कुछ है। और उनका छाती और उनके सारे आभूषण हिल रहे हैं, वो तेज जा रही हैं, वो बहुत तीव्रता से जल्दी जाना चाहती हैं कृष्ण का और यशोदा का दर्शन करने के लिए, जल्दी जाना चाहती हैं, इसलिए तेजी से कहां जा रही हैं। गोप्या स्मृष्ट मणिकुंडला निष्कंठया, गोपियों ने सुमृष्ट मणि कुंडल, बहुत सुंदर सुमृष्ट के लिए प्रभुपाद लिखते हैं चमकीला, जिसको देखने से चमक निकल रही है वो, और कुंडल खानों में डाले हैं, मिश्क कंठी है और गले के अंदर प्रभुपाद ने लिखा है लाकेट जैसे होते हैं वो छोटे छोटे सुंदर वो डाले हैं। वो चिरा अंबरम बड़ा लंबा लहंगा पहना है, चित्र अम्बरा, और वो लहंगा कैसा है पंचरंगा, पांच उसमें रंग है, ये भक्ति के सारे अंग उसमें जाओ, और बहुत भारी लहंगा पहना है। पथि शिखा, और जब जा रही है तेज तेज तो उनकी चोटी जो ऊपर जूड़ा बंधा हुआ है ना वो शिखा है, शिखा का मतलब सिख ऊपर का हिस्सा, और जो शिखा है चूत माल यह वर्षा, उसके अंदर जो फूल उन्होंने अच्छी तरह से रखे हैं वो पीछे गिर रहे हैं, कहें जो कृष्ण का दर्शन करके जाने जा रहे हैं उनके सर के ऊपर हम फूल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, हम तो उनके चरणों में गिरे हैं, उनके रास्ते के ऊपर फूल बिछ गए हैं, वहां से फूल गिर रहे हैं। नंदालयम, कहां जा रहे हैं, जहां विद्यालय में विद्या होती है, औषधालय में औषधि होती है, इस संसार में दुखालय में दुख होता है, ये जा रही है नंदालय में, वहां आनंद है, कौन आनंद है, कृष्ण परम आनंद जहां है वहां जा रही है। सवल्या व्रजा, सवल्या व्रजतीरा व्रजेयो, सवल्या किसके साथ जा रही है, स का तो मतलब होगा साथ जा रही है, किसके साथ जा रही है, हरे कृष्णा। नंदालयम जा रही है सवल्या, सवल्या हाथ में जो कंगन है ना वो छन छन कर रहे हैं, ऐसे लगता है कीर्तन करती हुई जा रही है छन छन, और जाती तो गाती जा रही है यशोदा के आनंद भयो लाला भयो, ये गाती जा रही हैं, तो हाथ में कंगन जो है वो बज रहे हैं। और व्रजित कहा, जब वो ब्रज में, ब्रज शब्द का अर्थ है व्रजंती, चलना जो छोटा बड़ा होता है, ये भागती हुई जा रही है। व्रजेयो हो, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कह रहे हैं व्यालोला, वो जब चल रही है कुंडल, उनके कुंडल ऐसे छलक रहे हैं, कुंडल उनके गालों के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं। पयोधर है उनके छाती, वक्ष स्थल जो है वो हिल रहा है, तेज जा रहे हैं। हार उसके ऊपर जो हार पहना हुआ है, फूलों का हार भी है और सोने का हार भी पहना है, और उससे बड़ी शोभा हो रही है। अब सुखदेव महाराज को गोपियों की ये शोभा गाने की क्या जरूरत पड़ गई, वो तो परम चूड़ामणि चूड़ामणि परम विरक्त है, अखंड ब्रह्मचारी जैसा है, बोला ये गोपियां जहां जा रही हैं इनके पीछे जाओगे तो कृष्ण का दर्शन होगा, यशोदा की गोद में कन्हैया मिल जाए। ये सुंदरता अपने लिए नहीं कर रही है, ये सुंदरता कृष्ण के दर्शन के लिए कर रही है, ये सुंदरता इनकी बहुत बड़ी सराहनीय। अब जब वहां गोपियां पहुंची, यशोदा मैया ने लाला को छुपा लिया अपने आंचल में, गोपियां कहती हैं आपको तो बधाई देने आए हैं, आपके इस लाला का मुख चंद्र देखने के लिए आए हैं, आप छुपा क्यों नहीं है। बोली बहन आपकी कृपा से हुआ है, लेकिन कहीं नजर ना लग जाए। तब भगवान ने अपना चरण निकाला, इन गोपियों ने, वो बड़ी गोपियां भी हैं, और विशेष रूप से गोपियों के लिए आचार्य लिखते हैं चार भाइयों की पत्नियां, चार भाई जो है नंद उपनंद, नंद के भाई है उपनंद सुनंद नंदन आदि उनकी पत्नियां, और फिर उनके और संतान, और फिर सामान्य गोपों की पत्नियां, और निश्चित रूप से पास में अब आगे जब नंद उत्सव होगा तो वृषभानु महाराज आएंगे, तो कीर्ति माता आएगी, तो वो तो उनके आने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक ये सब आ गए हैं जो नंद गोकुल वाले हैं। तो ये सब जब स्त्रियां आई हैं तो उन्होंने चरण भगवान के देखे हैं और अपना जीवन तो निछावर कर दिया। अब तो कहती हैं आप देखो तो कि हम तो नजर उतारने का सामान लेके आई, हम तो आशीर्वाद देने आई है, और देखो इसके अंदर हल्दी लाई है, ये राई लोन लाई है। और तब गोपियों ने बालक का मुख देखते समय आशीर्वाद दिया है, ये गोपियों के आशीर्वाद का वर्णन है। ताशीष प्रंजन्तांस, ताशीष हम आशीष दे रही हैं, ये स्त्रियां गोपियां आशीष दे रही हैं कृष्ण को कृष्ण जो सबको वर देने वाले हैं उसको आशीष। चिरपाही, आप तो चिर काल तक हमारी रक्षा करो। कैसे? अरे नंद राजा है, इसके बाद आप राजा बनोगे तो बहुत समय तक हमारी रक्षा करना। बालक के, हे बालक बड़े होके राजा बनोगे, चिर जियो, हमारे राजा बनो, हमारी रक्षा करो। हरिद्रा चूरण तैलादि भी, अब जो वो घास था उससे हरिद्र चूरण लेकर, पहले तो अपने एक दूसरे के ऊपर, एक आचार्य निखान है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर चढ़का और कुछ बालक के ऊपर नजर उतारने के लिए चढ़का। हरिदा चूर्ण तैलादि भी सिंचयंतो अजनम उजिगो, अजन्मा का जन्म हो गया। भगवान कैसे हैं? अजन्मा, अजो पीसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पीसन, मैं अजन्मा हूं। और अजन्मा के जन्म के ऊपर और गाने लगी, क्या गाने लगी? ताशीषा प्रजंता, आप चर जियो, हमारी रक्षा करो, आप हमारे राजा बनो, ऐसा आशीर्वाद गोपियां दे रही हैं। और उस वक्त ये जब गोपियां दे रही हैं, अब कुछ गोपियां गा के दे रही हैं आशीर्वाद, क्योंकि स्त्री तो रोती है तो भी गाती है, यहां तो खुशी का मौका है, वो तो गा रही हैं। आवाद्यंत विचितारानी, अब तो सारे बाजे तो बज रहे हैं, ये ढोलक बज रहे हैं, मंजीरा बज रहे हैं, विचितारानी वाद्य कौन से विचित्र विचित्र ढंग से बजा रहे हैं और आनंद में मुग्ध होके बजा रहे हैं। लेकिन विचित्र वाद ये है कि ग्वाल बाल जो खड़े हैं बाहर, उनके पास कोई बाजा तो नहीं है, वो कोई किसी का पीठ बजा रहा है, कोई किसी का पेट बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई हाथ बजा रहा है, तो ये विचित्र वाद्य। वादिरानी महोत्सव, यहाँ महोत्सव होने लगा। महोत्सव का मतलब है कि नंद गोकुल में नहीं पूरे ब्रह्मांड में महोत्सव होने लगा। देवता तो प्रसन्न हुए कि उनका काम हो गया, भगवान धरती के ऊपर आया, धरती का बाहर उतरेगा, साधु संत ऋषि ऊपर के लोगों में, ब्रह्मा के लोक से लेके सतलोक तपलोक जनलोक तक उत्सव महोत्सव होने लगा। कृष्ण विश्वेश्वरे अनंते, क्यों तो उत्पन्न हो रहा है इतना बड़ा महोत्सव? क्यों है? कृष्ण आया है। कौन सा कृष्ण? विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर आया है। तो पूरे ब्रह्मांड में आनंद हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आनंद हो गया। कैसा है कृष्ण? अनंत, ये अनंत है, तो इनके लिए अनंत जगहों के ऊपर उत्सव होना चाहिए। आप भी पूना में उत्सव मना रहे हैं और पूरा विश्व उत्सव मना रहा है। एक बार हम कथा करने कहीं गए तो हमने कहा रात को 12 बजे आप लोग इकट्ठे हुए हो कृष्ण के जन्म के लिए, क्यों? अगर कोई आपका भगवान के साथ संबंध नहीं होता तो रात को 12 बजे जागकर काय के लिए जन्माष्टमी मनाने आते? आप सबका भगवान के साथ नित्य संबंध है, बस उसको भूल गए हैं। जन्माष्टमी के दिन याद आता है और इसको याद करके और भगवान का नाम जपना शुरू कर दो, अपने संबंध को पुनः पुनस्थापित कर लो, तो आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और यहाँ लिखा है कृष्ण विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजम आगते, नंद के ब्रजम में कृष्ण आया तो आज बहुत सुंदर बाजे बजने लगे, जो जिसके पास था वो बजाने लगा, बड़े बड़े कलाकार बड़े कलाकारी से बजाने लगे। अब इतने सारे बाजे बजाने हैं तो फिर गोपाहा पर, हाँ, इसके बाद नंद उत्सव का वातावरण बना है। मेरे ख्याल में 18 श्लोक तक है नंद उत्सव, समय तो आपका पूरा हो रहा है, आप बताइएगा मुझे। गोपाहा परस्परम हृष्टा, कहते ये तो हो गया यहां तक आने वालों की बात, अरे देवता भी आकाश से नीचे उतर के आए गोपों का वेश धारण करके कृष्ण के दर्शन करने के लिए नंदालय में आए हैं। भगवान शंकर जी आए हैं पार्वती के साथ, नंदी के ऊपर चढ़ के गणेश जी को साथ में लाए। आपने देखा कि ये तो 20 लाख गाय दे रहा है और ये देख नहीं रहा है किसको क्या देना है, कहीं हमारा बैल ना दे दे। वो तो बाबा पूछ पकड़ के बैल की खड़ा हो गया और पार्वती तो छाती से लगा लिया गणेश जी को, कहीं ये हाथी घोड़ा पाल की ये सब यहाँ कहीं इसको छोटा हाथी का बच्चा समझ के देना दे। ऐसे सारे देवता तो यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। और ब्रज में अब क्या हुआ? अब दही कांदो उत्सव होने वाला है। इसके बाद है दही कांदो उत्सव का वर्णन। दही कांदो क्या है। तो यहाँ गोपहा परस्परम हृष्टा, गोप आपस में आनंद में मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। दधि क्षीरा दही, दूध घृत, घृतांबू, घृतांबू क्या होता है, जितना दूध उतना घी उतना दही, उसके अंदर केसर आदि मिला के एक बहुत सुंदर रंग बनाते हैं, उसको कहते हैं घृतांबू। घृत घी को कहते हैं, अंबू पानी को कहते हैं, उतना पानी उसमें मिलाते हैं और उतना दूध आदि मिला के ये घृतांबू बनाया। और असिंचंतो, एक दूसरे के ऊपर सिंचन करने, और इस असिंचंतो के शब्द का अर्थ एक लिखा है असिंचंतो विलंपंतो नवनीत मक्खन चिकिष्पु हो। चिकिष्पु का मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे को लेप लगाने लगे, मक्खन एक दूसरे के ऊपर लगाने लगे। कहते नीचे भी तो गिरा होगा, नीचे गिरा होगा तो हम जैसे जो बूढ़े मोटे थे वो तो फिसल के गिरने लगे। तो चिकित्सक का मतलब है पांव का फिसलना और साथ साथ हाथ भी हिलना, तो कुछ गिर रहे थे। तो यहाँ नंद भवन में अब क्या हो गया है, चंपूकार लिखता है कि नंद भवन में समुन्द्र दही दूध दही का बन गया, लेकिन इससे पहले दही कांदो उत्सव होना चाहिए। दही कांदो उत्सव से पहले नंद बाबा तो बड़ा सुंदर बीच में बैठा आनंद ले रहा है, कहे जब तक वृष भानु हमारे मित्र नहीं आएंगे तब तक ये उत्सव शुरू नहीं होगा। तब तक वृष भानु कीर्तिदा और अपने ग्वाल ग्वाल बालों के गोपों के संग में आ गए। कीर्ति माँ के सर के ऊपर घड़ा और घड़े के अंदर घृतांबू। अब इसका शुरू होने के लिए नंद बाबा ने लाठी लेके उसको फोड़ा है और फिर सबने ये माखन और घी और दही और दूध ऐसे उछालना शुरू कर दिया और नंद का भवन दही का और दूध का सागर बन गया। इसलिए चंपूकार ने लिखा है आनंद वृंदावन चंपू में संभवत कि आज एक और अद्भुत सागर का मंथन हो रहा है। एक सागर का मंथन देवताओं ने दैत्यों से मिलकर किया था, उसमें तो विष निकला था, लेकिन यहां जो सागर का मंथन हो रहा है इसके अंदर जात अहलाद है। यहां अहलाद निकला है, यहां आनंद निकला है। वहां तो एक काम जिन्हों गाय लिखी निकली थी, यहां तो 20 लाख गाय तो अलंकृत करके दान कर दी है। और यहां मंथनी कौन है, वहां तो जड़ पर्वत मंथनी था, यहां मंथनी कौन है। अब पूर्णमासी ने आकर, जो पुरोहितानी है पूर्णमासी ने आके नंद बाबा को कहा, नंद बाबा आके बैठो यहाँ, ये आपके ऊपर सारा घृतांबू डालेंगे और आज का आपके घर में लाला हुआ है, आप थोड़ा नाच लो। मन में तो नंद बाबा के आनंद का समुद्र उमड़ रहा था। नंद बाबा को इस खीर के सागर में खड़ा कर दिया और एक बड़ा धोती लेके उनके कमर में बांध दिया। एक तरफ बरसाने वाले, एक तरफ नंदगांव वाले खड़े हो गए और उसका अच्छी तरह से ऐसे मंथन करने लगे। आज मंथनी नंद बाबा साक्षात बना है और आनंद का यहाँ समुन्द्र मंथन हो रहा है और ये दूध की धारा नंद भवन से निकल के जमुना में गिरी है और ये दूध धारा यहाँ से बहती हुई प्रयागराज तक जाके पहुंची है। प्रभुपाद जी यहाँ फिर लिखते हैं, देखो कितना दूध दही मक्खन उनके घर में है कि वो खेल भी दूध दही से रह रहे हैं, दूध दही से खेल रहे हैं। और नवनीतस, और ये मक्खन के गोले एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, मुंह के ऊपर डाल रहे हैं। कितना समृद्धिशाली ब्रज है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, माणक है, मोती है, कहां से आए, कहां से आए। तो दो श्लोक और पढ़ते हैं, फिर दोबारा कहते हैं नंद महा मनते भ्यो। नंद फिर महामन है, बड़ा उदार है, इसका मन कृष्ण के ऊपर है और इसके लिए उसके मन में इतनी उदारता है, इतना देने का दिल है, इतना मेघनानी मस है। ते भ्यो वासो, ते भ्यो का मतलब ये जो गाने वाले नाचने वाले ये गोप उपहास ले आए थे तो इनको वापस भी तो कुछ देना चाहिए ना, ये सब इतनी सारी भेंट ले जाए तो इनको वापस नहीं देंगे के? नहीं, ये स्त्रियां आई है, इन सबको, ये गोप, ये गोपियां, ये ग्वाल बाल और ये ब्राह्मण, ये सूत, ये माधव, इन सबको क्या किया, वासो कपड़े दिए, अलंकार सुंदर आभूषण दिए, गोधनम गाय, गाय दिया, सूत मागध किसको दिया, सूत को दिया, मागध को दिया, वंदी भीगियो दिया, ये अन्य और जो सारे भेंट लाए थे उनको वापस भेंट दिया। विद्यो कौन से नापदंड से दिया, बोला जिसकी जो कला, जिसकी जो योग्यता, उसके अनुसार उसका पूजन करके और उसको दिया बड़े आदर के साथ। तैस तैस, हाँ, विद्या उपजीविका, इनको क्यों दिया, ये सूत मागध बंदी भी को क्यों दिया? बोला इनकी आजीविका, इनका जीवन का निर्वाह इसी कथा कीर्तन और भगवान की सेवा करने से है, तो उनको तो दिया। तैर तैर कामेर अधी अधीन आत्मा, ये अधीन, ये दीन नहीं है, ये कंजूस नहीं है, ये दिल खुला हुआ है, महामन है, देखकर संतुष्ट नहीं हुआ, सामने वाला संतुष्ट हुआ इतना दे दो। महामना को कहते हैं आपके पास है 1,000 रुपये और आप 1,00,000 रुपये देने की दिल रखो, उसको महामना कहते हैं। क्योंकि भगवान बैठा है ना, लक्ष्मीपति बैठा है, तो कमी कहां से, अंतिम श्लोक में ये आएगा कहां से ये दिया और उसका कारण बताएंगे। तय काम है अधीना, ये तो दीन थोड़ी था, ये अधीन था, ये उधार था, उनकी संतुष्टि हो उसमें। और कहते हैं दिया क्यों, कारण बता रहे हैं। तैश तय कामेर आदिन आत्मा यथो उचितम आपूज्यता, उनकी पूजा करके उनके कला के, उनकी योग्यता के और उनके वर्ण के अनुसार उनको सम्मान दिया। काय के लिए? विष्णु आराधना अर्थाय, भगवान विष्णु भक्तों को प्रसन्न करने से प्रसन्न होते हैं। ये भगवान विष्णु की प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे तो भगवान की प्रसन्नता भक्त की प्रशंसा से होती है, तो भक्तों को प्रसन्न करेंगे जो भगवान के भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दरिद्र नारायण नहीं, ये दरिद्र नहीं है, ये जो आए हैं ये दरिद्र नहीं है, ये विष्णु नहीं है, ये नारायण नहीं है, ये नारायण के भक्त हैं। इन सबको यथा उचित विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं वर्ण आश्रम का उद्देश्य ही विष्णु, विष्णु की संतुष्टि है, तो यहां विष्णु को प्रसन्न करना। विष्णु को प्रसन्न क्यों करें? विष्णु को प्रसन्न करें विष्णु के भक्तों को पूजा करके और दान देकर, दो बातें संतुष्ट करना। ब्राह्मण संतुष्ट दिल खोल के आशीष देगा, ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो उसके हृदय से जो आशीष निकलेगा वो आशीष निश्चित रूप से फलदायी होगा। और क्यों भगवान को प्रसन्न करना, ये तो उनका धर्म है, लेकिन उद्देश्य और क्या था? स्वपुत्र, अपने पुत्र घर में जो गोपाल आया है, स्वपुत्रस्य उद्यायच, अपने पुत्र का कल्याण के लिए, अपने पुत्र का स्वस्थ के लिए, अपने पुत्र की चिर बड़ी आयु के लिए उन्होंने इस प्रकार से इन सबको दान दिया। अब एक बात है, इतना सारा उत्सव हो गया, रोहिणी आई नहीं, बात क्यों नहीं आई? पति घर में नहीं है, बड़ा उत्सव हो रहा है, वसुदेव कारागृह में अभी तक है, कारागृह में बड़ा दुखी है, तो पत्नी को बाहर नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा अंदर चले गए, नंद बाबा ने रोहिणी को जाके कहा ये आपका घर है, आपके यहां आने से हमारे घर में बालक और ये सतना बड़ा सुख हुआ है। अब यशोदा तो सूत की ग्राम में है, आले आने वाले सब मेहमानों को देखेगा कौन, उनको आभूषण वस्त्र भेंट कौन देगा, आप चलो सारे उत्सव का सामान संभालो। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी महाभागा है, क्यों रोहिणी महाभागा है? महाभागा रोहिणी ये है कि वसुदेव के सारे पत्नियों में से देवकी तक ने भी कृष्ण की बलराम की बाल लीलाएं नहीं देखी है, ये रोहिणी केवल एक है जो महाभाग है, जिसको कृष्ण बलराम की बाल लीलाएं देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपा अभिनंदिता, नंद ने जाके अभिनंदन किया कि देवी चलो आपके आने से हमारे घर में ये मंगल हुआ है, आप कृपा करके चलिए। और उनको दिया क्या? उनको भी वस्त्र आभूषण दिए। व्यचरद दिव्य वास सर का, ऐसे दिव्य वास, यहाँ दिव्य वास लिखा है, दिव्य वास का मतलब के भगवान की पूजा में उपहार देने वाले इतने बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण दिए और कंठाभरण बड़े बड़े सुंदर हार पहना दिए और ये भी उपहार भी दिए। और द्रोहिणी वहां से आई है और भूषित होके वाह विचरद दिव्य वास सरक, अब बाहर आके सबका स्वागत कर रही है, गोपियों से मिल रही है, किसको क्या देना है क्या लेना है ये सारे कर रही है, कंठाभरण भूषित आए। अब एक प्रश्न उठता है, इसके साथ कथा को पूरा करते हैं, प्रश्न ये उठता है कि 20,00,000 गाय दी सोना चांदी से अलंकार करके और अभी ये वस्त्र आभूषण दे रहे हैं, ये सब इतना तत्काल कहां से आ गया? तो ये एक श्लोक पूर्णाहुति का श्लोक है नंदोत्सव का, आज कथा को यहां विराम देंगे, कल यहां से नंद बाबा मथुरा जाएंगे कर देने और वसुदेव से मिलेंगे और फिर वापस लौटते हुए अपन कल पूतना उधार की कथा छठा दिया कल शुरू करेंगे, कृष्ण जी कृष्ण बलराम की जैसी इच्छा होगी। तो ये श्लोक तत आरभ्य नंदस्य तत आरभ्यस्य, आरंभ का था आरंभ से, शुरुआत से, कब कौन से दिन से, जिस दिन कृष्ण आया, कृष्ण आया क्या, कृष्ण ने आने का संकल्प किया, तब से नंदस्य नंद के यहां व्रज सर्वः समृद्धिमान, नंद का पूरा ब्रज मंडल समृद्धिमान हो गया। समृद्धिमान का मतलब धन धान्य से भर गया। बोले को कहां से आया, हरेरा निवास आत्म गुणई, अब हरि जहां निवास करेंगे, साक्षात भगवान जहां निवास करेंगे, तो वहां सहस्र लक्ष्मी अपने आप आएंगे कि ना आएंगे, सहस्र लक्ष्मी संभरव पूज्य मानम गोविंदम आदि पुरुष प्रभुपाद जी ने ये श्लोक लिखा है, हरेर निवास आत्म गुणई रमा कीरणाम अभूत निरप, महाराज रमा की किरणा भूरी होगी, रमा तो वैसे लक्ष्मी का नाम है, लेकिन जब कृष्ण के साथ रमा कहेंगे तो राधा रमण हो जाएगा। दोनों आचार्यों ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीवा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा इस रमा से राधा के अवतार का संकेत है, राधा रानी आएगी, कृष्ण आ गए हैं तो राधा रानी भी आएगी, लेकिन राधा रानी की सेवा में अनंत लक्ष्मियां हैं, उन्होंने पहले से पूरे ब्रज के अंदर सब जगह लक्ष्मी क्रीड़ा करने लगी, इसका एक भाव लिखा है रमा क्रीड़ा, रमा के साथ ये रास लीला में शब्द है रमा की है, रमा तो वहां रमा का अर्थ राधा ही है, उस रमा का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, सीता रमण रामचंद्र, लक्ष्मी रमण विष्णु, राधा रमण कृष्ण, तो यहां राधा का भाव है, राधा के साथ रमण करेंगे, ये राधा के राधा कृष्ण के रमण की भूमि बन गई, और राधा जहां आएगी सहस्र लक्ष्मियां उनके साथ हैं, और एक ब्रजवासी जब इसका वर्णन करते हैं ना कि नंद बाबा ने खजाने खोल दिए, कोई चांदी ले जा रहा था, किसी ने कहा चांदी क्यों लाए हो, बोला नंद बाबा के वहां सोना मिल रहा है, चांदी फेंक दी, या सोना उठाया वो सोना ले जा रहा था, अरे भाई सोना कहां ले जा रहा है, वहां तो हीरे मोती है, वो सोना फेंक दिया, वो हीरे मोती ले जा रहा था, बोला ये क्यों ले जा रहे, वहां तो जो है रतन मिल रहे हैं, तो ब्रज में कोने कोने में कहीं चांदी चांदी कहीं सोना कहीं हार कहीं मणियां कहीं ये बिखरी हुई है, तो इसका मतलब लक्ष्मी जी यहां दिल खोल कर कृष्ण के आने के लिए नंद के यहां पूरा समृद्धिमान, और ऐसा जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं जब से हमारे घर में ये गौरांगा महाप्रभु आए हैं, ये निमाई आया है, तब से हमारे घर में धन अन्न और सब चीजें अपने आप आती हैं, अरे लक्ष्मीपति आए तो फिर किसी चीज की कमी रह जाती है क्या, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता के इस श्लोक के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य लिखा है लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रव सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, और प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं परम लक्ष्मी वो तो है राधा रानी, इसलिए ब्रज में राधा रानी आएगी, इसका संकेत इससे मिलता है। इसके साथ आज की कथा विराम देते हैं, कल यहां से अपन चलेंगे, कल अपन यहां से चलेंगे आगे भगवान श्री कृष्ण कृपा की तो नंद बाबा के साथ मथुरा चलेंगे। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है जिज्ञासा है प्रभु, हरे कृष्णा, युगल श्याम प्रभु, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका सुंदर प्रवचन के लिए। मेरा एक प्रश्न है, ये जो कृष्ण जहाँ प्रकट हुए थे तो ये जो फेस्टिवल मनाया गया नंद भवन में, तो ये गोकुल भवन में हुआ था ना, ये ना कि नंद गांव में, बिकॉज पहले
ना ये गोकुल गोकुल ये गोकुल का है ना, ये तो ये तो भगवान की बाल लीला है गोकुल में।
हाँ, So, वो गोकुल महावन में मतलब वो प्रकट लीला किधर हुई थी ये, फिर
गोकुल महावन में ये सारी लीला अब जो इस वक्त है वो तो नंद भवन ऊपर बना हुआ है, जिसके नीचे उसी अंदर जाते हैं तो त्रिनावत शिला है वहां, और नीचे दामोदर है, ये पूरा जो क्षेत्र है यही नंद उत्सव का क्षेत्र है, और पास में तो जमुना बहती है, तो गोकुल बाल उत्सव तो गोकुल में होगा ना, मथुरा से गोकुल में कृष्ण को ले जाया गया।
हाँ,
साढ़े तीन साल के बाद ही वहां से छत्तीसगढ़ में वृंदावन आए हैं
एंड नंदगांव में बाद में गए थे, जो अभी नंद भवन जो नंदगांव में वो बाद में वहां पर गए थे। तो
वो नंद बाबा के यहाँ तो छत्तीसगढ़ में भी साढ़े तीन साल रहे, सखा लीला और गोचारण लीला सुनिए तब तो ये रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ अपने मंदिर जाते हैं कृष्ण बलराम ये रमन रेती ये पूरा यहाँ रहे हैं। नंदगांव में तो विशेष रूप से जब उनकी किशोर लीला शुरू होती है तब वो नंदगांव में गए।
थैंक यू।
अस्थल में ब्रिज में, इसलिए ब्रिज का अर्थ है विचरण करते रहते हैं, जहां उनके गायों के लिए घास मिलता है वहां चले जाते हैं, ऐसा वो तीन जगहों पे विशेष रूप से रहे हैं। और जब रावल से विष्णु निकले तो वहां से वो आके राल के पास रहे हैं, जो राधा कुंड जाते हैं राल ना, यहाँ विष्णु महाराज इनके साथ वहां से इन्होंने गोकल छोड़ा, उन्होंने रावल छोड़ा, वो वहां से राल के पास में नगर है एक गाँव छोटा सा है तोशिबा है, वहां आके रहे हैं। तो ये और बाद में वो गए बरसाना में और वो गए नंदगांव में, तो ये इनका तीन स्थानों में इस तरीके से भ्रमण है, और जगहों पे भी गायों के साथ रहते थे।
आवाज नहीं आ रहा।
हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद आपका।